राजेश ने गुर्राते हुए कहा, अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की तो यहीं के यहीं मैं अंश सिंघानिया की जान ले लूंगा। इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं का यहीं इसे मार डालूंगा। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे हैरानी से भर चुके थे, लेकिन आस्था की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देख सकती थी? उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह राजेश एक बार फिर उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वहीं सब लोग गुस्से से राजेश की ओर देखकर बोले, तू तो अस्पताल में एडमिट था ना, तुझे होश कब आया और तू यहां कैसे पहुंचा? तभी राजेश हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उस वक्त मेरा साथ दिया और अब मेरा बचना तुम लोगों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे मालिक, मेरे बॉस ब्लैक डेविल ने जो काम मुझे सौंपा है वो मैं आज पूरा करूंगा। राजेश की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो आगे बोला, वैसे भी ब्लैक डेविल अरमान सिंघानिया की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख देखना चाहता है, और अरमान सिंघानिया को दुख देने का सबसे आसान रास्ता उसके बेटे की जान से होकर जाता है, उसके बाद उसकी बीवी, फिर उसका पूरा परिवार, सबको एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। राजेश के ये शब्द सुनते ही सबकी आंखों में उसके लिए नफरत और गुस्सा भर आया। हर किसी का मन कर रहा था कि अभी जाकर उसका गला काट दे, लेकिन सब पीछे हटे हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राजेश अपने पागलपन में अंश को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी अरमान गुस्से में बोला, राजेश, तुम मेरे परिवार के दुश्मन हो और मेरे सामने खड़े हो, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? अरमान सिंघानिया कौन है ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। इस पर राजेश हंसते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, जिसे खुद नहीं पता कि उसे कब इस लड़की से प्यार हो गया, जिसे ये भी नहीं पता कि कब वो पूरी तरह बदल गया। बिना दिमाग के अरमान सिंघानिया कुछ की नहीं है, वरना तुझे अब तक पता चल चुका होता कि तेरा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। वो और जोर से हंसते हुए बोला, वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सबको यही पता था कि राजेश गांव से आया है और उसका कोई परिवार है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ ब्लैक डेविल का आदमी था, वही उसका परिवार था। सब समझ चुके थे कि ब्लैक डेविल ने शुरू से ही अरमान पर नजर रखने के लिए राजेश को उसके घर में नौकर बनाकर रखा था, ताकि अरमान से जुड़ी हर खबर उसे मिलती रहे। राजेश ठहाका लगाते हुए बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आज तुम्हारे बेटे की जान जाने से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी अरमान सिंघानिया, और मेरा बॉस इससे बहुत खुश होगा, लेकिन याद रखना ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत जल्द तुम्हारी बीवी भी तुमसे छीन ली जाएगी और फिर उसका भी खून होगा, तब तुम पूरी तरह अकेले रह जाओगे। राजेश, जो कभी अरमान की एक नज़र से डर जाता था, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा था। ये देखकर अरमान पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसके माथे की नसें तक उभर आई थी। तभी आकाश और चारों ने तुरंत आगे बढ़कर अरमान को कसकर पकड़ लिया। शांत हो जाओ अरमान, खुद को संभालो, अगर तुमने अभी कुछ किया तो वो अंश को नुकसान पहुंचा देगा, उसके हाथ में हमारा बच्चा है। तभी अरमान दहाड़ते हुए बोला, राजेश, अगर तुम अपनी जान सलामत चाहते हो तो अंश के बाल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम्हें अपने जन पर भी अफसोस होगा। अविनाश भी गुस्से से चिल्लाया, अगर मेरे भांजे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दूंगा राजेश। सब लोग अलग अलग तरह से राजेश को धमकी दे रहे थे, लेकिन अंश, वो लगातार राजेश की गोद में रोए जा रहा था। उसकी नजरें बार बार आस्था को ढूंढ रही थी। आस्था को ऐसा लग रहा था मानो उसका बच्चा उसे पुकार रहा हो, मामा प्लीज मुझे बचा लो। आस्था का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्था इस वक्त एकदम हाइपर हो चुकी थी। अचानक अगर कुछ साफ दिखाई दे रहा था तो वो था चाकू, सिर्फ चाकू, वही चाकू जिससे थोड़ी देर पहले सब्जी काटी जा रही थी। एक पल भी सोचे समझे उसने वो चाकू अपने हाथ में उठा लिया। राजेश को कुछ भी समझने या सोचने का मौका दिए बिना आस्था ने तुरंत उसके उस हाथ पर जोरदार वार कर दिया जिस हाथ से उसने अंश को थाम रखा था। राजेश दर्द से चीख पड़ा और उसी पल आस्था ने फटाफट अपने अंश को उसकी गोद से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अंश को सीने से लगाते ही आस्था जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही राजेश पर हमला हुआ, वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह सन रह गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हो गया। उसी पल अरमान दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने राजेश की गर्दन पकड़ ली। आस्था ने जिस चाकू से उसके हाथ पर वार किया था, उसी चाकू से अरमान ने राजेश के सीने पर एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। गुस्से और दर्द में डूबा अरमान लगातार 18 से 20 बार वार करता रहा। राजेश के मर जाने के बाद भी अरमान का हाथ नहीं रुका। इस वक्त अरमान किसी इंसान से ज्यादा एक दरिंदे जैसा लग रहा था। वहीं आस्था पूरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर सभी लड़कियां दौड़कर उसके पास आईं और उसे संभालने लगीं। वसुंधरा भी आगे आकर आस्था को थामने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आज आस्था ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरह उसके बच्चे की जान जा सकती थी। ये पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था और उसका दिल पूरी तरह दहल रहा था। उधर अविनाश और अबीर दोनों आगे बढ़े। उन्होंने जोर से अरमान का हाथ पकड़ लिया। अविनाश कांपती आवाज में बोला, बस करो अरमान, वो मर चुका है। जैसे ही ये बात कही गई, अरमान की चेतना कहीं ना कहीं लौटती हुई दिखाई दी। उसने एक पल के लिए अबीर की ओर देखा। अरमान का ये रूप देखकर सभी लोग पूरी तरह डर चुके थे। लेकिन अगले ही पल अरमान आस्था और अंश के पास गया और जाकर दोनों को कसकर गले से लगा लिया। अरमान को अपने पास देखकर आस्था खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रो पड़ी। जब सब लोगों ने अरमान को इस तरह आस्था और अंश को संभालते हुए देखा तो सभी को थोड़ी राहत भी महसूस हुई। सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद अरमान ने आस्था को शांत किया और फिर खुद को उनसे अलग कर सीधे अपने कमरे में चला गया। अरमान के जाने के बाद लड़कियां आस्था को संभालने लगीं और उसे पानी पिलाया। उधर आहान तुरंत आगे आया और अबीर के सामने खड़े होकर बोला, आई एम सॉरी वीर, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि कहीं तुमने कुछ कर दिया हो और इसी वजह से मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। तुम चाहो तो मुझ पर वापस हाथ उठा सकते हो। ये कहते हुए उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। लेकिन वीर तुरंत आगे बढ़ा और उसने आहान को गले से लगा लिया। मैं जानता हूँ कि मेरे गलत कार्यों को वजह से आप लोगों के लिए मुझ पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, मैं बदल चुका हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे अपने नए परिवार के रूप में स्वीकार करें। अभी आप लोगों के मन में मेरे लिए शक है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी मेहनत से आप सबका दिल जीत लूंगा। ये सुनकर वीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबके सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। अभिमान जी भी आगे बढ़े और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। ममता में डूबे उनकी आंखें भी भर आई थी। फिर वो दादाजी के पैर छूते हुए बोला, माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरी एक बेवकूफी की वजह से इतना सब कुछ बर्बाद हो गया। पता नहीं मेरा बच्चा कभी मुझसे बात कर पाएगा या नहीं। उसकी सीधी साधी नजरें अरमान की ओर थीं, लेकिन मुझे पता है जैसे ही उसका दिल साफ होगा और उसकी यादें लौट कर आएंगी वो मुझे जरूर माफ कर देगा। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा शांत हो जाओ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी और अब टल गई है, अंत भला तो सब भला। ये कहकर दादाजी ने सभी को शांत किया और कुछ सोचते हुए अंदर चले गए।
इधर आस्था ने खुद को थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन अंश अब भी उसके सीने से इस तरह चिपका हुआ था कि वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अंश को जरा भी छोड़ा तो कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। ये सोचकर उसकी रूह तक कांप रही थी। तभी आस्था कांपती आवाज में बोली, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। सम्राट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक बार फिर हमारे बेटे को अगवा करने की कोशिश की? हम जाकर उसे अपने हाथों से मार डालेंगे। अब क्योंकि सारे लड़के अरमान के पीछे पीछे चल दिए, सारी लड़कियां आस्था के पास ही रहीं। वहीं रश्मि की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अंश के गायब होने की खबर सबसे पहले उसी ने दी थी। इसीलिए आकाश उसे कमरे में आराम करने के लिए लेकर चला गया। लेकिन आस्था सबकी ओर देखकर बोली, हमें नहीं लगता कि हम आज शाम को वहां जा पाएंगे, क्योंकि अगर हम सम्राट यानी उस ब्लैक डेविल का चेहरा देखेंगे तो हमें सिर्फ यही याद आएगा कि उसने हमारे बेटे को अगवा करने की कोशिश की थी। नहीं, ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।